Check, check, check. 1, 2, 3, check, check, check. Okay. मुझे लगता मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए पहले कि मैं गायब क्यों हुआ. देखो बहुत सिंपल सा है, एक्चुअली सिंपल नहीं, बहुत अजीब है. मैं आज से कुछ 5 महीने पहले 6 महीने पहले मैंने आर्थर फ्लेक का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था. और मैंने जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था कि ये हमेशा वीडियो फर्स्ट पॉडकास्ट रहेगा, जिसका मतलब है कि मैं चाहूँगा कि पॉडकास्ट ऐसे बनाऊँ कि वो यूट्यूब पे डाल सकूँ. सिंपल था, मुझे कोई शौक नहीं था कि इसको सिर्फ ऑडियो ओनली पॉडकास्ट बनाना है. लेकिन शायद यूट्यूब को वो आइडिया पसंद नहीं आया. तो मैंने आर्थर फ्लेक का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, और आपको पता नहीं कितने लोगों ने देखा भी था, मतलब नोटिस भी किया था ये, कि मैं वो सारे के सारे मैं HDR में वो फॉर्मेट कर रहा था. और इशू क्या होती थी उससे, मेरे को उतने एक्सपोर्ट सेटिंग थिंग से पता नहीं थे. तो मेरे जो फाइल साइजेस हुआ करते थे वो बहुत ही मतलब एग्जॉर्बिटेंट साइज़ के होते थे. मेरा जो विटमिन वाला ब्रदर्स वाला पॉडकास्ट था वो आई थिंक 106 GB का फाइल था जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था. और मुझे जनरली 2 दिन लगते थे डालने से पहले, पब्लिश करने से पहले, कि यूट्यूब उसको प्रोसेस कर सके आराम से. अब हुआ क्या आर्थर फ्लेक के बारे में, यार वो मेरी बहुत बहुत पैशन से देखी है मैंने वो फिल्म, और मतलब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर पेंटअप था उस टाइम पे उसके बारे में बोलने के लिए. तो अप्रोक्सीमेटली मैं यूजुअली आधे घंटे के बनाता हूँ, वो अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट की बन गई थी अकेले बोलते बोलते, मतलब फिर समझ लो ठीक है. एक्सपोर्ट होते होते वो अप्रोक्सीमेटली 200 GB की हो गई थी. उसको मैंने डाला यूट्यूब पे, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया प्रोसेसिंग ये लिखा रहा. उसके बाद थोड़े से मेजर चेंजेस आए थे लाइफ में, इन द सेंस कि मेरा भाई आ गया था यहाँ पे. तो मतलब ऐसा था कि कोई, जब कोई नया बंदा ऐसे मूव इन करता है ना, मतलब नया बंदा क्या ही, बचपन से तो साथ ही रहा, बट बीच में बहुत सारा गैप हो गया था बहुत सालों का. तो कोई मूव इन करता है यार, थोड़ी सी लाइफ ना, मतलब आपको एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है वैसा. और फिर उसके बाद उसके वीडियो बनाना, फिर मेरे को अपने वीडियो बनाना, मतलब ये बेसिकली बैक बर्नर पर चला गया था. और मुझे बहुत 2-3 महीने बाद मैंने चेक किया इसका हुआ क्या, तो फेल टू प्रोसेस लिखा आया, बस और कुछ नहीं. मैंने फिर से ट्राई किया उस टाइम पे, फिर उसने देखा प्रोसेसिंग लिखा आया, कुछ हफ्ते रहा, मतलब कुछ दिन रहा, मैं फिर भूल गया. और फिर मैंने अभी नए साल में नव वर्ष के शुभ महोत्सव पे मैंने देखा कि हुआ क्या भाई. तो मुझे पता चला कि अपलोड तो फिर से फेल हो चुका है, अपलोड क्या बोल रहा हूँ, प्रोसेसिंग फिर से फेल हो चुकी है. तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, इस अपलोड को हटाता हूँ, मेरे पास मास्टर फाइल पड़ा हुआ है, और मैं बस उसको वापस रीअपलोड कर देता हूँ. ये दिमाग लगा के मैंने उसको डिलीट कर दिया. उसने पूछा हाँ डिलीट करो, मैंने बोला हाँ डिलीट करो, उसने डिलीट कर दिया. फिर मैंने बोला अपलोड करो, वो बोला मैं नहीं करूँगा. मैं बोला व्हाट द फक, क्योंकि मैं अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं क्रिएटर स्टूडियो में लॉक्ड इन हूँ, और मतलब वो उस नीचे लिखा आ रहा है साइन इन टू अपलोड. मैं क्या क्या तू अच्छा. मैंने फिर लॉग आउट किया, फिर से साइन इन किया, ठीक है, फिर अपलोड दबाया, फिर वही लिखा आया साइन इन टू अपलोड. तो अब मैं एसेंशियली वो मेरी 200 GB की फाइल बना के रखी हुई है. ऐसे नहीं कि बहुत मेहनत की थी मैंने उस पर, कुछ खास नहीं, बट मैं YouTube पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ अपने वीडियोस, एटलीस्ट पॉडकास्ट वाले चैनल पे. और तो मैंने सोचा कि यार देख, मेरे को बनाना तो है, क्योंकि बात करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे. लेकिन अब ये मुझे लगता है कि वीडियो फर्स्ट रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चैलेंजिंग हो रहा है. और मेरे पास अभी मैं प्रोसेसिंग स्टार्ट तो कर दूं इसको ठीक करने का, लेकिन फॉलो अप करने का टाइम नहीं है. तो मैंने सोचा कि बस ऐसे ही बैठ के शुरू करता है. तो मैं अभी मस्त अपने सोफे पे बैठा हुआ हूँ, मेरा घर यूजुअली जैसा कैमरा में दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हर जगह खाने के पैकेट्स पड़े हुए हैं। वैभव शर्मा ने देखा हुआ है, उसको मैंने ग्लिम्स दिया था कि आजकल क्या खाना चल रहा है मेरा। वो मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, उसको मैं रोज़ फोटो भेजेगा अपने फेलियर का, बट ठीक है। एनीवे तो ये था मेरा छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो कि 5 मिनट का हो गया। फक हे भगवान, ठीक है सॉरी। बट हाँ, तो अब ये रीस्टार्ट क्यों, वाई दिस सीजन 2.5 ये वापस क्यों आ रहा है यार? मैंने एक शो देखा, शो मतलब फिल्म नहीं, शो, और वो उस मतलब हे भगवान, मेरे को मेरी लाइफ में, मैं यूजुअली अपने बहुत सारे लाइफ इवेंट्स को एक कॉमेडी शो के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ। जैसे कि पहली बार बंक मारना से एसोसिएट कर सकता हूँ मैं बिग बैंग थ्योरी अराउंड 2010, और उसके बाद कॉलेज लाइफ एसोसिएट कर सकता हूँ मैं हाउ आई मेट योर मदर, हाउ आई मेट योर मदर और फ्रेंड्स के साथ। पूरी 4 साल मैंने बस उन्हीं को रिपीट करके देखा है, मजाक भी नहीं कर रहा। पोस्ट कॉलेज मैंने ऑफिस देखा, आई नो एम्बैरेसिंग बट कोई बात नहीं। और ऑफिस मतलब ऐसा हो गया था कि ठीक है, ये इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी। तो मेरे लाइफ के बहुत मेजर इवेंट के साथ एक कॉमेडी शो एसोसिएटेड रहता था हमेशा से, और एवर सिंस ऑफिस मेरे को कुछ ऐसा मिला नहीं है जो कि मुझे लगे कि ऐसे कैलिबर का है कि मैं लोगों को बता सकूं कि भाई ये देख। मैंने बहुत सारे बीच में ब्रिटिश शोज भी देखे थे, बट वो इतने अजीब, इतने ऑब्स्क्योर थे, इतने एब्स्ट्रैक्ट, इतने वियर्ड थे कि मैं उनको जनरली रेकमेंड नहीं करता था दूसरों को, अनलेस मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। जैसे एक शो था इन बिटवीनर्स करके, भाई क्या क्रिंज ह्यूमर, ओए मतलब नेक्स्ट लेवल ब्रिटिश ह्यूमर इज मेरा फेवरेट जॉनर है, मजाक नहीं कर रहा। और उसके बाद मैंने देखा था, बहुत सारे देखे थे ब्रिटिश सिटकॉम, देखना शुरू कर दिए थे मैंने। क्या था, आईटी क्राउड था, फिर मिरांडास था, 2000 और थे जो भी मैं एकदम दिमाग से स्लिप करा क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए वैसे फिर से, बाय द वे ये अभी भी वही ऑफ द कफ होने वाला है। और अभी मैंने बहुत टाइम बाद एक ऐसा शो देखा है जो कि मुझे लग रहा है कि इसको मैं याद रखूँगा, क्योंकि और मुझे नहीं पता इससे कौन सा लाइफ इवेंट एसोसिएट होगा। जनरली हिस्टोरिकली पैटर्न इसके हिसाब से कुछ ना कुछ एसोसिएट होता है, लेकिन मुझे नहीं पता इसके साथ क्या एसोसिएट होगा। मैं चाहता हूँ कि ये पैंडेमिक का एंड एसोसिएट हो जाए इससे, लेकिन ये शो मेरे लिए अब वो है जो एक टाइम पे मुझे लगता था कि ऑफिस है। और इस शो का नाम है हाउ टू विद जॉन विल्सन, HBO मैक्स पे है, मैंने HBO मैक्स पे देखा। आप अगर कहीं देखना चाहते हो तो मुझे नहीं पता कहाँ देखोगे, क्योंकि ये HBO मैक्स ओरिजिनल है जहाँ तक मुझे पता है। HBO ओरिजिनल है, शायद मैक्स ओरिजिनल नहीं है, शायद HBO ओरिजिनल है। और मेरा कैसे मैंने ये देखा बताता हूँ। केसी नाइस्टाट एक बंदा है, यूट्यूबर है, जिसको मैं मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरा आप मेरे को थोड़ा सा भी जानते हो तो आपको मैंने ये नाम 2000 बार बोल रखा होगा। मैं अभी एक फिल्म कोर्स कर रहा हूँ केसी नाइस्टाट फिल्म स्कूल का, और मैं मतलब मैं एकदम हेड ओवर हील्स हूँ उस बंदे पे, ठीक है। उसकी वजह से मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जो अब लाइफ चेंजिंग हो रहे हैं। और केसी नाइस्टाट के वीडियोस का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था न्यूयॉर्क सिटी। मैं आपको मेरे लिए अमेरिका, तभी मैं हिंदी में ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ बाय द वे, अगर अमेरिकी वीज़ा लगाना है, कोई देख नहीं रहा होपफुली, बट मेरे लिए अमेरिका इज़ न्यूयॉर्क और ख़त्म। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं LA में, बे एरिया, कुछ भी टेक्सास, मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरे को एक ही चीज़ पता है, न्यूयॉर्क खत्म, थोड़ा बहुत शिकागो क्योंकि डार्क नाइट राइजेस उधर, डार्क नाइट उधर शूट हुआ, बस। अपने को कोई मतलब नहीं बाकी अमरीका, आप खुश रहो कोई बात नहीं, अमेरिका ग्रेट अगेन, ओके नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर. ये इंग्लिश में क्यों बोल दिया, बट ठीक है. तो न्यूयॉर्क के साथ मेरा बहुत खतरनाक एसोसिएशन हो चुका था, इतना कि मैं कचरा व्लॉगर्स देख रहा था क्योंकि वो न्यूयॉर्क में रहते थे. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. मैं एक बंदा है आशीष चंद्रतरिया, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है वो भैनचोद, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, बट ठीक है. मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है यूट्यूब पे. वो बंदा अच्छा है, बंदा बुरा नहीं है, बंदा बहुत ऑनेस्ट है, सिंपल है, लेकिन मतलब वो व्लॉगर नहीं है और वो फिर भी है. और मैं उसको सिर्फ इसलिए देखता हूँ क्योंकि वो न्यूयॉर्क में रहता है और वो न्यूयॉर्क में घूमता है. और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो बंदा न्यूयॉर्क को कैरेक्टर बनाना भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उस सिटी उसके वीडियोज़ में उसका कैरेक्टर बन जाती है. ये इस सिटी का मतलब इतना बड़ा पावर है. मेरे लिए ऐसे इम्पैक्टफुल सिर्फ दो सिटीज़ है, एक लंदन है, एक न्यूयॉर्क है, बस. और न्यूयॉर्क का मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कभी लंदन का भी बताऊँगा. लेकिन इस तरह के मैं कचरा व्लॉगर्स देखते देखते मुझे एक दिन ये जो जेम मिला है, हाउ टू विद जॉन विल्सन, मैं मतलब बता नहीं सकता. ये शो इज़ द क्लोजेस्ट थिंग दैट आई हैव सीन जो केसी नाइस्टैट के व्लॉग से रिसेंबल नहीं करता है, बट उसका एक एक्सटेंशन लगता है इन अ कॉमेडिक फॉर्मेट. क्योंकि ये शो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है बिना न्यूयॉर्क के. न्यूयॉर्क का जो एक कैरेक्टर है, ये शो उसको बहुत अच्छे से मतलब उसको लेके चलता है. क्योंकि अच्छा, इस शो का स्टार्ट, हर एपिसोड का स्टार्ट, 6 एपिसोड है, 2 सीज़न है, आधे आधे घंटे के, तो बहुत छोटा शो है, तुरंत ख़त्म कर दोगे. इसके हर एपिसोड के स्टार्ट में जॉन विल्सन इसको स्टार्ट करता है हे न्यूयॉर्क बोल के. इट्स लाइक अ लेटर, इट्स लाइक एन ओड टू द सिटी इट्सेल्फ. और जो शो का स्ट्रक्चर है, हर एक एपिसोड का जो स्ट्रक्चर है, वो इतना न्यूयॉर्क स्ट्रक्चर है. मतलब आप किसी, मान लो आप किसी प्रॉपर न्यूयॉर्कर से मिलते हो, आपका जो एक्सपेक्टेशन होगा, आपका जो एक्सपीरियंस होगा, वो एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस हर एक एपिसोड में मिलेगा आपको. तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ. आई थिंक काफ़ी मेरा प्यार जता दिया मैंने न्यूयॉर्क को लेके और इस शो को लेके. तो ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है, मॉक्यूमेंट्री स्टाइल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री, लेजिट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है. मैंने HBO Max का रिसेंटली सब्सक्रिप्शन लिया और बस नीचे देखा डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में, और मुझे दिखा हाउ टू विद जॉन विल्सन, और बंदा एक कैमकॉर्डर पकड़ के कुछ रैंडमली रिकॉर्ड कर रहा है. और मैंने बस, मेरे को पोस्टर इंट्रीगिंग लगा, मैंने खोल दिया. और उसके बाद पहले सीजन का पहला एपिसोड लिखा है, हाउ टू स्मॉल टॉक. मैं बोला अबे क्या मजाक कर रहा हूँ. ये तो अपना टेरिटरी है. तो मैं जाके उसको दबाया, मैं उसको खोला और मैं पागल हो गया. मैं देख के पागल हो गया. मैंने बोला ये मैं क्या, बाप रे ये मैंने क्या ढूंढ लिया. आपको याद है, मतलब जब आप बहुत कम, पता नहीं किस किस को याद होगा ये, बट ऐसा आप स्कूल जा रहे हो, सुबह उठे हो, 9XM चला दिया आपने, VH1 चला दिया, और एक रैंडम भयंकर गाना बज गया जो किसी ने नहीं सुना. अब आपके दिमाग में वो गाना बैठ गया और आपको स्कूल जाके सबको बताने गए कि भाई देख ये गाना सुन, प्लीज़ घर जाके गाना सुन, व्हाट इज़ दिस. और फिर लोग गाना सुनते, अगले दिन स्कूल आते, फिर आपकी तारीफ करते हैं, आपका ईगो बूस्ट. मैं ये पॉडकास्ट बस इसी रीज़न की वजह से बना रहा हूँ. मेरे पास अब वो स्कूल वाला ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि अब मतलब इतने लोगों के साथ मैं कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ कि इन्फ्लुएंस कर सकूँ. तो जितने भी 4-5 लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे, भाई प्लीज़ ये शो देखो. अब मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, देखो मैंने कुछ बताया नहीं शो के बारे में, चलो बताता हूँ पहले, ठीक है, सॉरी. दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल ओवर द प्लेस, आई डोंट केयर. दिस इज़ द एक्सपीरियंस दैट यू गेट जब मैं ऑफ द कफ बात करता है. आप मेरे से ऐसे रैंडमली बात को, मैं फिर से बड़बड़ करने जा रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी. मेरे को ज़रा कंपोज होने दो. ओके, ये शो के बारे में थोड़ा और बताता हूँ मैं. डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है, 28 मिनट के एपिसोड्स हैं, 2 सीज़न, 6 एपिसोड पर सीज़न. और अभी सेकंड सीज़न जस्ट ख़त्म हुआ है, जस्ट आई थिंक न्यू ईयर के दिन पे ही या फिर जस्ट उसके पहले. और इस एपिसोड का एसेंस है इसकी राइटिंग में. तो पूरा शो, ऑलमोस्ट पूरा शो इज इन द नैरेटिव फॉर्मेट. मतलब जॉन विल्सन खुद से नरेट करता है सब कुछ, और नरेशन के साथ विजुअल्स अटैच्ड होते हैं. जो कॉमेडिक सेंस है और जो कॉमेडिक टाइमिंग है उस नरेशन में, जो बात बोली जा रही है और उस विजुअल में, वो इतना बिजार है, वो इतना सरप्राइजिंग है. आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो जो वो दिखा रहा है. आप नहीं, मतलब मुझे नहीं पता आप कर सकते हो. मैं नहीं कर रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था. मैंने अपने भाई को बैठ के दिखाया. बंदे का कॉमेडी चैनल है, पता नहीं 2,000 सब्सक्राइबर और वो बैठ के देख रहा कि ये क्या गजब. तो मतलब आई थिंक वो जो विजुअल कॉमेडी थी वो नेक्स्ट लेवल. राइटिंग उसकी इतनी सिंपल, इतनी ऑथेंटिक है, लेकिन विजुअली आप एकदम समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ. और उसके बाद इस शो में, हर शो में एक थीम होता है, जैसे कि हाउ टू स्मॉल टॉक, और उस थीम पे हल्का हल्का बिल्ड होता है, फिर एक टैंजेंट पे भागते हैं, और फिर वापस उस टैंजेंट से आप वापस आते हैं कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए. ये फॉर्मेट जो है, क्योंकि इस फॉर्मेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप जब प्रोग्रेशन दिखा रहे हो अपने थीम का, हाउ टू स्मॉल टॉक या किसी भी चीज़ का, और फिर आप एक टैंजेंट पकड़ने जा रहे हो, तो आप लोगों को हुक्ड कैसे रखो? आप ये कैसे नहीं कर रहे हो कि लोग जो हैं वो छोड़ देंगे कि ये क्या हो रहा है? और वो इतना यूनिक स्किल सेट है इस पूरे शो का कि मेरा दिमाग खराब हो गया था. मैं थरली एंगेज था इसमें, और मुझे फिर वही हमेशा ये लग रहा था कि यार ये कितना ज़्यादा न्यूयॉर्क एक्सपीरियंस है. हम न्यूयॉर्क में, मतलब न्यूयॉर्क इज़ फिल्ड विथ ऐसे एक से एक आइटम कैरेक्टर लोग, जो विजुअली इतने इंटरेस्टिंग है, और फिर बोलते हैं तो इतने सिंपल लगते हैं, और फिर आप उनसे बात करते हो तो नॉर्मल सी बात एकदम टेंजेंट पर भाग जाती है. और ये पूरा मतलब कल्मिनेशन है उस पूरे एक्सपीरियंस का एक एपिसोड में. और ऐसे हर मतलब ऐसे 12 एपिसोड है टोटल, और इतने रैंडम, इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगेगा कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था इसको इस तरीके से होते हुए. और वही बेस्ट पार्ट है, देर इज नो वे दैट यू कुड हैव थॉट ऑफ दिस, एंड देर इज नो वे दैट दिस शो कुड हैव एग्जिस्टेड अपार्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क. तो मैं तो मतलब ये बोलूँगा कि अगर आप भी केसी नाइस्टैट हैंगओवर में हो और आपको एक शो चाहिए जो मतलब आपको न्यूयॉर्क से एकदम प्यार ही करवा दे, बाय गॉड, तो ये शो तो 100% रिकमेंड करूँगा मैं. 100% मुझे नहीं पता कि लोग इसके बारे में इतना बात क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है बहुत क्रिंज कॉमेडी है. ये फॉर्मेट क्रिंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बंदा किसी एपिसोड में जाके ऐसे लोगों से भिड़ जाता है, और ऐसे ऑकवर्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि आप उसके लिए मतलब घबराहट और थोड़े क्रिंज फील करते हो कि ये बंदा क्या जवाब देगा, ये बंदा पूछ कैसे रहा है. और यूजुअली वो तभी होता है जब आप उस टेंजेंट में पहुंच जाते हो. ये बंदा जब वो एक टेंजेंट में भाग जाता है अपने थीम को लेके, और आप ऑलरेडी उस एब्सर्डिटी में इन्वॉल्व हो, एकदम उससे पूरा इनसर्कल्ड हो, और उसके बाद वो ऐसी हरकतें करता है उस मतलब स्पेस में, उस बबल में. जीनियस लगता है मुझे, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक थीम, एक एक टेंजेंट जो ये पकड़ता है और मतलब ऐसा ऑब्स्क्योरली भाग जाता है, वो इतना वेल थॉट है और इतना वेल कनेक्टेड है, पता नहीं कैसे. राइटिंग मास्टर क्लास है ये. और एक चीज़ और जो इसको केसी से रिलेट करती है मेरे हिसाब से, वो ये कि ये हर चीज़ डॉक्यूमेंट करता है. हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, एक एक चीज़ को. बंदे ने एक डायरी बना रखी है जो पिछले 10 साल से उसमें हर दिन का आज मैंने क्या किया लिखते जा रहा है विदाउट फेल. और एक एक पेज की डायरी नहीं है, एक पेज को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, और उन ब्लॉक्स में वो बस 3 से 4 पॉइंट लिखता है कि आज मैं क्या किया, मेरे को कैसा लग रहा है. और कभी कभी वो उसको रिविजिट करता है, ये मैं करता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ वैसे, बट मैंने बहुत सारी फालतू वीडियोज़ बना रखे हैं इसी वजह से। लोग मुझे 2010 में गालियाँ देते थे, क्यों कैमरा निकाल के दिमाग ख़राब कर रहा है। मेरे पास इतना मिंट कलेक्शन है ना उस टाइम के मेमोरीज़ का, मैं अभी अपने वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ। सब लोग मुझे मैसेज करते हैं, भाई क्या मज़ा आ गया, नॉस्टैल्जिया, दोज डेज वर, चुप रह चूतिया, तू मना कर रहा था, मैं ज़बरदस्ती लिया तेरा प्राइवेसी वायलेट करके, ठीक है, बकचोदी मत कर मेरे साथ। लेकिन वही मतलब एक रिलेटेबिलिटी भी है, आप अगर नॉस्टैल्जिया के चौदे हो मेरी तरह तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है चीज़। लेकिन नरेटर और जो शो का प्रेजेंटर है जॉन विल्सन, कभी कैमरा पे नहीं आता है और फिर भी वो एक डॉक्यूमेंट्री स्टिच करता है, और उसकी राइटिंग, उसके विजुअल्स और उसकी खुद की पर्सनालिटी, उसके नरेशन स्टाइल में, उसके प्रेजेंटेशन स्टाइल में वो जो निकल के आती है ना, दैट इज़ अनबिलीवेबल। मेरे पास एडजेक्टिव्स नहीं है, यूजुअली नहीं होता ऐसा मेरे साथ कि एडजेक्टिव्स नहीं हो मेरे पास अनबिलीवेबल या फिर गजब या फिर भयंकर, ये सब बोलने के बदले मैं यूजुअली वर्ड्स बहुत मेटिकुलसली यूज़ करता हूँ। देखा अभी क्या वर्ड यूज़ किया मैंने, मेटिकुलसली, स्पेलिंग आती तुझे, चुप रहे। लेकिन मैं लेजिट मतलब ये उस तरह के शोज में से है जो मैं अब तो मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, वैसे भी कर चुका हूँ पर चलेगा, कि मैं अनलेस आप वो देख रहे हो मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकता। और इतना भी मैंने जो 15-20 मिनट यहाँ पे बात की है इस शो को लेके, वो बहुत मतलब मैं पैशन से बोल रहा हूँ, इन द सेंस कि मैं चाहता हूँ आप ये देखें, मैं चाहता हूँ आप ये एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ऐसा शो मुझे नहीं लगता बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। एक मैंने इस शो का, इनफैक्ट वो प्रोड्यूसर भी, एक मैंने शो देखा था नेथन फॉर यू करके, वो भी बहुत सिमिलर था, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं वो भी, लेकिन वो भी ऐसी ऑकवर्ड कॉमेडी वाला जॉनरा से बिलोंग करता है। और नेथन फील्डर नाम है आई थिंक उस बंदे का, और वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस शो का। मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा ये शो, प्लीज़ अगर आपने देखा नहीं है तो। और हाँ बस आई थिंक मुझे आज इतनी सी ही बात करनी थी। मुझे नहीं पता कि नहीं, ये तो ऑब्वियसली यूट्यूब पर डाल नहीं रहा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा ये वाला, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा पूरा सीज़न है इसको मैं एटलीस्ट ऑडियो फॉर्मेट में बोल के ख़त्म कर दूँ। मैं 15 निकालता ना एपिसोड में शायद, हाँ 15 एपिसोड में निकालूँ, इसके 15 एपिसोड निकाल के मैं इस सीज़न को ख़त्म करूँ और फिर से हम जून से स्टार्ट कर सकें नया सीज़न, सीज़न 3 प्रॉपरली वीडियो के साथ। बट ठीक है यार, वापस आ चुके हैं, जल्द फिर से मिलेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा। बिरला बोलने का मन है लेकिन बोलूँगा नहीं।